श्रीमद् भागवतम अध्याय दशम स्कंद अध्याय 21 श्लोक क्रमांक 18 हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यद् पानीय सूय वसकंदर कंदमूलैः। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। अनुवाद, समस्त भक्तों में से यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य, उपयुक्त अनुवाद श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत से मध्य लीला उद्धत किया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत का ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय, गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते हैं और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते हैं। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवस, दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्ध की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहां कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते हैं। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने का मुलायम कंद, शरीर सजाने का रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। हरे कृष्ण। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यद् पानीय सूय वसकंदर कंदमूलैः। समस्त भक्तों में से यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, ये पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल वालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। आज हम गोवर्धन पूजा या अन्नकूट के नाम से ये प्रसिद्ध है सब जगह ये फेस्टिवल, ये जो कॉल फॉर फेस्टिवल उत्सव, ये उत्सव जो है अन्नकूट नाम से प्रसिद्ध है, वो यहां हम मना रहे हैं। लोगों को लगता होगा कि पर्वत की क्यों पूजा कर रहे हैं हम, गोवर्धन एक मामूली पर्वत की हम क्यों ऐसा पूजा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। पर यहां गोवर्धन है क्या, कौन है और क्यों उसका हम खास गुणगान कर रहे हैं? ये दशम स्कंद में भागवत में गोपियों के मुख से सुनने को मिलता है। गोपियां वृंदावन के अलग अलग वेणु, भगवान के वेणु का गुणगान करते हुए, अलग अलग चीजों का गुणगान करते हुए गोवर्धन का जब गुणगान करती हैं तो कहती हैं कि हरिदास वर्य, हरिदास भगवान के जो दास हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है हरिदास वर्य। भागवत में तीन लोगों को हरिदास नाम से सूचित किया गया है, गोवर्धन, युधिष्ठिर महाराज और उद्धव। हालांकि युधिष्ठिर महाराज और उद्धव को हरिदास संबोधित किया गया है, पर गोवर्धन को हरिदास वर्य, हरिदास भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ माना गया। क्यों, इसका वर्णन शास्त्र में आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में राधा रानी के साथ बैठे हुए थे। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हमें इस गोलोक वृंदावन में एक ऐसा स्थान का आप ऐसा स्थान बनाओ कि रचना करो जहां हमारी लीलाएं बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। तो भगवान ने अपने हृदय के अंतरंग में ध्यान किया और उनकी जो प्रेम है उसका जो सार है उनके हृदय में से एक बीज उत्पन्न हुआ और एक छोटे से पत्थर के रूप में आया और देखते देखते वो पर्वत एक बहुत विशाल पर्वत हो गया। और इस पर्वत पर भगवान के उनके भक्तों के साथ जो सुंदर लीलाएं हैं उस लीला के लिए जो कोई भी चीजें जरूरी है वहां आ गई। बहुत सुंदर झरने, ऐसा शीतल जल, पानीय सुयवस कंद रकंद मूलई ही, पानीय, पानी मतलब पीने के लिए सुंदर शीतल जल। भगवान जब थक जाते हैं लीला करके ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए तो पीने के लिए शीतल जल, मुंह धोने के लिए, पैर धोने के लिए, पीने के लिए। इतना ही नहीं, वहां इतने सुंदर सुंदर रस, जैसा यहां प्रभुपाद लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, पीलू का रस, आम रस, ऐसे सुंदर फल का रस भी प्रदान करता है पानी। और कंदर, कंदर मतलब गुफाएं, ये गुफाएं इतनी सुंदर है, हर एक व्यक्ति इस दुनिया में चाहता है कि गर्मी के समय में एसी रूम में बैठे और ठंडी के दिन में थोड़ा हीटर चालू करके बैठे। यहां उतना नहीं है, उत्तर भारत में वो ज्यादा है, तो हीटर डाल के बैठते हैं, अनुकूल वातावरण बड़ा अच्छा रहे, अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये जानते हुए ये गुफाएं ऐसी हैं जो गर्मी में ठंडक प्रदान करती हैं और ठंडी में गर्मी, और बारिश के अंदर एक संरक्षित सुरक्षित जगह और बहुत ही सुंदर वातावरण, ताकि भगवान आराम कर सके वहां। पानी कंदर सूय वस गौ, भगवान गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान गाय बहुत प्रिय है, तो गाय की प्रसन्नता के लिए ऐसे घास, अलग अलग वहां वर्णन किया गया, अलग अलग शब्दों से वर्णन किया गया इस घास के बारे में, सुगंधित, इतने सुंदर गंध है उसमें, सुगंधित घास और सुकोमल, इतने कोमल के उसको चबाने में कोई तकलीफ ना हो गायों को, और इतने मतलब गाय को भी शक्ति प्रदान करने वाले, और उनकी जो दूध है वो भी सुगंधित और बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे घास खास गाय गायों के लिए बनाए हुए, कंदर सूय वस कंदमूल ही, और फल और अलग अलग प्रकार की तरकारियां सब्जी सब प्रकार की चीजें उपलब्ध हैं, जब थक जाते हैं खाने के लिए। तो इस तरह से जो कुछ भी, और पर्वत के जो शिलाएं हैं वो शिलाएं भी कुछ जगह इतनी चिकनी है कि ग्वाल वाल अपना चेहरा देख सकते हैं, वहां अपने आप को सजा सकते हैं, और कुछ शिलाएं इतनी मुलायम है जब भी भगवान उनके चरण कमल स्पर्श करते हैं तो वो इतने मुलायम हो जाते हैं, मिट्टी जैसे वृंदावन की मिट्टी आपने देखा होगा, रज मक्खन के समान एकदम होता है, ऐसे हो जाते हैं, ताकि भगवान के चरण कमल जहां भी रखे वहां उनका एक प्रिंट आ जाए। इस तरह से तो जो कुछ भी भगवान की लीलाओं के लिए अनुकूल है, गायों के लिए, गवों के लिए अनुकूल है, बछड़ों के लिए अनुकूल है, गोपियों के लिए अनुकूल है, ग्वाल वालों के लिए अनुकूल है, उनकी सेवा के लिए, उनको तृप्त करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, आदर आदरपूर्वक जो कुछ भी उन्हें चाहिए, ये जानते हुए पहले से सब कुछ इंतजाम किया गया, ये गोवर्धन पर्वत है। हरिदास वर्य भगवान के दासत्व करने में सबसे श्रेष्ठ। तो जब भगवान धरातल पर अवतीर्ण होने का निश्चय किए और उन्होंने राधा रानी से कहा, तो राधा रानी ने कहा कि मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक गोवर्धन वृंदावन और यमुना नहीं आएगा। तो उनके निवेदन पर सतयुग में ही हिमालय पे गोवर्धन का आगमन हुआ, द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण आए। तो वहां एक पर्वत था द्रोण पर्वत, तो द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में गोवर्धन प्रकट हुए, और कहा जाता है कि गोवर्धन का इतना ऊंचा था, इतने ऊंचे थे वो कि हिमालय की चोटी के आसपास इतने। तो एक बार पुलत्स मुनि वहां आए और उन्होंने निवेदन किया कि मैं इसकी सुंदरता देखकर वो कहे कि मैं इसे ले जाना चाहता हूं और यहां उस पर बैठकर मैं तपस्या करना चाहता हूं, मैं दूसरी जगह लेना चाहता हूं। द्रोण पर्वत ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा है, वो कैसे ले जाओगे आप? और जैसे महाराज दशरथ ने स्वीकार किया विश्वामित्र के कहने पर, बोले बहुत ठीक है, बोले ठीक है, पर गोवर्धन पर्वत ने एक शर्त रखा पुलस्त मुनि के सामने, बोला आप मुझे उठा सकते हो, पर अगर एक बार कहीं नीचे रख दोगे तो फिर मैं नहीं उठूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और पुलस्त मुनि गोवर्धन को उठा के ले आए, अभी पुलत्स मुनि को गोवर्धनधारी क्यों नहीं कहते हम लोग? पुलत्स मुनि ने भी गोवर्धन को उठाया जब पड़ा था गोवर्धन, पर उनको गोवर्धनधारी क्यों नहीं कहते? क्या कहना है आप लोग? हम भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान को कहते हैं गोवर्धनधारी। ऑफकोर्स उठाने का अंतरंग उद्देश्य उनको अपना स्वार्थ के लिए था, उठा के तपस्या वहां ले जाके मैं अपने जगह बैठा के तपस्या करूंगा। पर भगवान ने जो गोवर्धन को उठाया उनका नाम भूरी कर्म, एक कार्य से हजारों चीजें वो कर लेते हैं जो हम आज चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप में। तो इस तरह से गोवर्धन उठाने का भगवान का उद्देश्य जो था वो अलग ही था। वो लीला जब हम श्रवण करते हैं तो पूर्ण रूप से हम पवित्र हो जाते हैं, इसलिए गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, पुलस्तु मुनि को नहीं। तो फिर जा रहे थे और एकाएक गोवर्धन ने प्रार्थना की देवताओं को, तो पुलस्त मुनि को थोड़ा लघु शंका लग गया, तो उन्होंने गोवर्धन को रखा, फिर अपना काम हुआ, फिर आचमन किए, फिर से उठाने आए। अगर सचमुच में गोवर्धनधारी होते तो अभी भी उठा सकते थे, अब नहीं उठा पाए, बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, अंत में उन्होंने क्रोध से शाप दे दिया गोवर्धन को कि तुम हर रोज हर दिन एक राई का दाना जैसा जो साइज है उतना कम होते जाओगे। तो ये शाप सुनकर गोवर्धन बहुत ही आनंदित हो गया। आप कहेंगे क्यों आनंदित हो गया? क्योंकि इतना विशाल पर्वत था कि वो सोच रहा था इतना विशाल पर्वत बेचारे गोपाल चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे, जितना एकदम मीडियम साइज होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो उनके शाप से हिमालय जैसा पर्वत सतयुग त्रेता और द्वापर के अंत में एकदम सही साइज में आया जहां भगवान सुंदर लीलाएं कर पाए। तो बहुत आनंदित हो गया, बोले भगवान की इच्छा थी, हो गया, बहुत अच्छी बात, प्रेम से स्वीकार किया हूं। ये हरिदास का लक्षण है, शाप को भी एक आशीर्वाद के रूप में उन्होंने लिया। ये हरिदास वर्य जो भी होता है उसे भगवान की इच्छा समझकर वरदान समझकर लेना। तो द्वापर के अंत में फिर भगवान इस तरह से पुलस्त मुनि के द्वारा गोवर्धन हिमालय से वृंदावन में आ गए। तो ये हुआ गोवर्धन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फिर भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए द्वापर के अंत में कलयुग के शुरुआत में, तब ये गोवर्धन लीला जो भगवान ने किया, इस गोवर्धन लीला से भगवान ने अलग अलग चीज सिखाया। पहला कि कैसे गिरी गोवर्धन भगवान को सबसे प्रिय है और भगवान से अभिन्न है। एक्चुअली गिरी गोवर्धन जो है, गोवर्धन पर्वत भगवान से अभिन्न है, इसीलिए भक्तगण गोवर्धन शिला को भगवान के श्री मूर्ति के रूप में उनकी आराधना भी करते हैं। जैसे शालिग्राम शिला भगवान विष्णु से अभिन्न है, इस तरह से गोवर्धन शिला भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से अभिन्न है, उसके रूप में हम लोग करते हैं। ऑफकोर्स उसको कोई ब्रजवासी के आशीर्वाद से लेना चाहिए, जाके उठा नहीं सकते हम लोग। तो ये उन्होंने प्रदर्शित किया। और दूसरा चीज, भगवान को अपने सारे ब्रजवासियों के साथ बहुत ही अंतरंग लीला करनी थी, आदान प्रदान, प्रेममय आदान प्रदान करना था। उसने वो मौका भी इस गोवर्धन के लीला के द्वारा भगवान ने 7 दिन और 7 रात तक न कोई सोया, न कोई खाया, न कोई पिया। पिया तो बस भगवान की सुंदरता को पी रहे थे अपने आंखों के द्वारा, पूर्ण रूप से मग्न हो गए थे, समय को मालूम ही नहीं था उन्हें। खाने की जरूरत नहीं पड़ी, सोने की जरूरत नहीं पड़ी, पीने की जरूरत नहीं पड़ी, जिस प्रकार परीक्षित महाराज साध्य भागवत सप्ताह, ऐसे ब्रजवासियों का भगवान ने भागवत सप्ताह कराया, 7 दिन 7 रात सेम। तो ये दूसरा। और तीसरा काम जो भगवान गोवर्धन को उठा के किया, वो एक सुंदर भजन में आता है, एक दिन मान इंद्र को मारियो, नख ऊपर गोवर्धन धारियो, नाम पढ़ो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो इंद्र के वो बहुत ही अहंकार हो गया था, क्योंकि सब उनकी पूजा करते हैं, सब लोग उसका यश गुणगान करते हैं, उनको बहुत सारी सेवा करते हैं, और वार्षिक स्तर पर उनका यज्ञ करते हैं, इंद्र पूजा, ये सब स्वीकार करते 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 अहंकार हो गया था। उस अहंकार को भी निकालना था, क्योंकि भगवान कहते हैं नवे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानी। इंद्र कोई असुर तो नहीं है, पर अहंकार हो गया था, और जब अहंकार हो जाता है आदमी को, और उस अहंकार को थोड़ा चूर हो जाता है तो क्रोध आ जाता है, और जब क्रोध आ जाता है तो व्यक्ति भूल जाता है, पागलपन, कौन क्या है कुछ भूल जाता है, और ऐसी चीज क्रियाएं कर बैठता है, बहुत ही अपराध कर बैठता है, जिसके द्वारा उसका पतन हो सकता है। तो इसीलिए उससे बचाने के लिए भगवान ने यह सुंदर लीला की। तो ये कारण है। तो भगवान ने मथुरा के ब्राह्मण की पत्नियों का उद्धार किया, और वहां से जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि नंद महाराज और सारे ग्वाल बाल गोवर्धन इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, ये यज्ञ का उद्देश्य क्या है, इसे क्या प्राप्त होगा, ये सब आप मुझे समझाइए। कृष्ण को मालूम था, सर्वज्ञ है वो, कृष्ण ने पहले से भी देखा होता, 6 साल से हर बार करते हैं, पर उनका पूछने का उद्देश्य कुछ और ही था, क्योंकि आज वो इंद्र का मान को निकालना चाहते थे, इंद्र को जो अहंकार हो गया था उसको चूर करना चाहते थे। तो जानबूझ के उन्होंने प्रश्न किया, क्यों ये पूजा चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, कृपया मुझे ठीक से बताइए। क्योंकि कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी रीति रिवाज अगर न जानते हुए सब लोग कर रहे हैं, इसीलिए हम भी कर रहे हैं, क्यों हमें नहीं मालूम। तो थोड़ा बहुत फायदा मिलता है, पर पूरा फायदा नहीं मिलता। पर अगर क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसको कैसा करना है, किस लिए किया जाता है, इससे फायदा क्या है, ये सब जानते हुए करेंगे तो उसका पूरा फायदा मिलता है। तो कृपया पिताजी आप हमें बताइए कैसा करना है। और तब नंद महाराज ने बात टालने की कोशिश की, पर भगवान एकदम अड़े रहे, नहीं 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 हमें बताइए, अरे आप संत महात्मा जो होते हैं जो सही ठीक से बोल देते हैं सबको, कोई चीज छिपाते नहीं, कृपया हमें बताइए, और मैं बहुत आतुर हूं जानने के लिए, क्या ये वैदिक संस्कृति के अनुसार है या ये लौकिक चीज है, कुछ ऐसे ट्रेडिशनल, जैसा गणपति पूजा लोकमान्य तिलक ने शुरू किया, सार्वजनिक गणपति पूजा अभी भी कर रहा है, क्यों कर रहा है हमें नहीं मालूम, बस थोड़ा चंदा इकट्ठा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ऑर्केस्ट्रा करते हैं, किसने शुरू किया हमें नहीं मालूम, पब्लिक करती है हम भी करते हैं। तो इस तरह से कुछ चीजें लौकिक रूप से शुरू हो गई, क्यों शुरू हुई, उसका उद्देश्य क्या है, किस तरह से करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पब्लिक करती है हमको अच्छा लगता है बस। तो भगवान ये जानना चाहते थे क्यों ये लौकिक है ये वैदिक है, कृपया मुझे सब कुछ ठीक ठीक समझाइए। और तब नंद महाराज ने बताया ये लगभग लौकिक ही समझ लो, ट्रेडिशनल रीति रिवाज के द्वारा आ गया है कि हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा हम लोग वैश्य हैं और हम लोग गाय चराते हैं, जंगल में जाते हैं, पर्वत पे जाते हैं, घास चराते हैं और कुछ फसल उगा के खाते हैं। तो हम जैसे वैश्यों के लिए बारिश बहुत जरूरी है, और वर्षा करने वाले जो देवता हैं वो इंद्र हैं। तो कृतज्ञता पूर्वक उनको प्रसन्न करना तो चाहिए, हमारा कर्तव्य है। इसीलिए साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं, जो हमें बारिश देते हैं, जिसके द्वारा घास इत्यादि उत्पन्न होती है और जिसके द्वारा हम सुखी हैं। तो भगवान ने, साक्षात भगवान श्री कृष्ण वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत, वेदों की रचना की है और हम सबको कहते हैं कि वेदों का पालन करो। खुद एक नास्तिक व्यक्ति के समान इंद्र को भड़काने के लिए अपने पिता से कहने लगे, पिताजी ये इंद्र पूजा सब छोड़ो, अरे कर्म करो, कर्म ही पूजा, आप कर्म करोगे इंद्र को बारिश देना ही पड़ेगा। कर्म मीमांस ज्ञान ये कहता है आप कर्म करो, बारिश देना ही पड़ेगा इंद्र को, इंद्र हो या नहीं हो पर बारिश आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो, कर्म ही श्रेष्ठ है और कर्म करोगे तो देना ही पड़ेगा। और जहां तक इंद्र का सवाल है, वो अपना कर्तव्य करोगे तो इंद्र को देना ही पड़ेगा। अरे समुद्र कोई पूजा करता है क्या? समुद्र में ही पानी जाता है, जहां जरूरत नहीं वहां भी देता है वो, उसको तो देना ही है अगर आप कर्म करोगे। तो ये सब छोड़ो और कर्म करो। ये सब सुनते हैं हम भी बहुत बार सुनते हैं ऐसा, पर ऐसा कैसा है? कभी कभी गधे के समान कर्म करने के बाद भी एक व्यक्ति को मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता, इसको कैसे समझाएंगे? बेचारा पूरा कर्म करता है पर कुछ नहीं मिलता उसको, और दूसरा बिना कर्म की बैठा है और उसको सब कुछ मिल जाता है, इसको आप कैसे समझाएंगे? इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग फिर कहा स्वभाव, अपने अपने स्वभाव से कर्म करना है और कर्म के अनुसार देना ही है। अगर भगवान भी हैं तो अगर हम कर्म करेंगे तो भगवान को भी देना ही पड़ेगा, भगवान भी कर्म के नियंत्रण में आते हैं। ऐसा उल्टा सीधा सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज को कहने लगे। इसका मतलब आप जान लीजिए कि ये सारे उल्टे सीधे सिद्धांत जो हैं, ये कोई नई बात नहीं है, पहले से थे। सृष्टि में जैसा 84 लाख योनियां हैं, क्यों? अलग अलग प्रकार की इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए 84 लाख प्रकार की योनियां बना के तैयार करके रखा हुआ। कैसी इच्छा है वैसे शरीर में घुसा देते। तुमको ऐसी इच्छा है चलो ये खाओ, तुमको सोने की इच्छा है भालू बन जाओ सोते रहो 6 महीने। इस तरह से जैसी इच्छा है भोग करने की, वैसा एक सिद्धांत, वैसा एक फिलॉसफी, वैसा एक वाद आपको मिल जाएगा। सर्वस्थिता हम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान, आपको एक ऐसी बुद्धि देंगे और आप बड़े सुंदर से वो सिद्धांत बोलोगे। तो इस तरह से भगवान ने जानबूझकर इंद्र को भड़काने के लिए और इंद्र पूजा को रोकने के लिए ये कह दिया। और फिर कहा कि पिताजी आप तो घास के बारे में कह रहे हो ना, हम तो गाय चराने वाले व्यक्ति हैं, हमें घास जरूरी है, हमें जंगल और पहाड़ यही तो सब कुछ देता है, तो मैं कहूंगा इस पहाड़ की हम पूजा करेंगे, गोवर्धन की पूजा करो आप, क्योंकि गोवर्धन की कृपा से हमको पानी मिल रहा है, घास मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जानबूझ के इंद्र को भड़का रहे हैं, नास्तिकवाद, कर्म मीमांसवाद सब कहते हुए। नंद महाराज ने कहा बेटे तुम जो कहोगे वो करने के लिए तैयार, तुमको प्रसन्न करना मेरा हमारा इच्छा है। पर कहा ठीक है एक काम करते हैं, पहले इंद्र पूजा कर लेंगे, उसके बाद तुम जो बोलोगे उसकी भी पूजा करेंगे, चलो गोवर्धन की भी करेंगे, पर पहले इंद्र को तो कर ले। बोले नहीं इसको शुभ से शीघ्रम, शुभ चीजों में देर मत करना। बोले सब वो करने के लिए बहुत समय लगेगा, ये सब तैयारी किया है ना, यही चीजों को लेकर गोवर्धन की पूजा करो। अंततः ब्रजवासियों का एकमात्र उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, तृप्त करना। तो नंदमान ने कहा बेटे ठीक है करेंगे, कैसा करना है हमें तो बताओ। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार 5000 साल पहले एक रीति बना दी कि अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो हर साल गोवर्धन पूजा करो। कैसे? उन्होंने कहा ऐसे, सुनो, सबसे पहले अच्छे अच्छे खाद्य बनाओ। बहुत सुंदर वर्णन है, कृष्ण बुक में पढ़िया पढ़िए, रसगुल्ला, क्या क्या लिखे, समोसा, ये वो, दाल, बोले पहाड़ जैसे भोग बनाओ। थोड़े दिन पहले हमारे मंदिर में हुआ, पहाड़ जैसे भक्त लोगों ने बना के लाए, तो इस तरह से पहाड़ जैसे जितना हो सके उतना उतना फर्स्ट क्लास भोग बनाओ, दाल, सब्जी, चावल, ये वो जो चाहिए, अलग अलग प्रकार के मिठाइयां सब बनाओ। बनाने के बाद सभी ले आओ और ब्राह्मणों को खिलाओ। गो ब्राह्मण ने हिताय च भगवान, सबसे पहले ब्राह्मणों को खिलाओ, क्योंकि वो ब्राह्मण खाने के बाद आशीर्वाद देंगे, तो उनको खिलाओ। फिर गौओं को खिलाओ, अच्छा घास खिलाओ, उनको प्रसन्न करो। उसके बाद सब जितने लोग हैं, कोई भी किसी में कोई भेदभाव नहीं, जो कोई भी आएगा सबको खिलाओ, कोई शूद्र हो या चांडाल हो या कोई भी हो, सबको खिलाओ। फिर गांव को, गौओं को खिलाने के बाद जितने सारे दूसरे प्राणी हैं सबको खिलाओ, कुत्ते बिल्ली सबको खिलाओ, और पूर्ण रूप से सब तृप्त होने के बाद फिर गौओं को सामने रखकर फिर ब्राह्मणों को गुणगान करते हुए, ब्राह्मण जो मंत्र पाठ वेद पाठ करते हुए, और सारे ग्वाल बाल अच्छी तरह से सज धज कर आप लोग आओ, और गईयों को सामने रखकर फिर ब्राह्मण और फिर सारे ग्वाल बाल आप लोग सज धज कर इस गोवर्धन की परिक्रमा करो। उन्होंने कहा ठीक है, उसके अनुसार उन्होंने किया, खिलाए सबको, खिलाए और उसके बाद गोवर्धन की परिक्रमा शुरू की। और गोवर्धन की जब बहुत पहाड़ पहाड़ जैसे प्रसाद लाए, भोग लाए और रखे गोवर्धन की प्रसन्नता के लिए, गोवर्धन को खिलाने के लिए, और जैसे जैसे परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा हुआ, जैसे समाप्त हुआ, तो आश्चर्यचकित ऐसी हो गई, सब लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन का स्वरूप ले लिए, बड़ा सा मुंह, विशाल शरीर, और देखते देखते जितने सारे पहाड़ पहाड़ पर रखे हुए थे भोग, जो सारे ग्वाल वालों ने जितना हुआ था सब लाया था, पूरे ब्रज में जितने सारे चीज है सबको इकट्ठा किए थे, वो सबको गोवर्धन ने एक ही बार ऐसा उठाया और स्वाहा, खत्म कर दिए पूरा। और फिर मांगने लगे, अनियोर अनियोर, और थोड़ा दो, और थोड़ा दो। कहा कोई नंदग्राम में बेचारे दूर आ गए, गोवर्धन नहीं आ पाए, तो वहां अर्पण किए, उसको भी ले लिए, एक हाथ फैलाकर गोवर्धन ने उसको भी खा लिया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को और सब लोगों को हमेशा के लिए बता दिया कि मुझमें और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है। इस तरह से स्वीकार किया। पर आश्चर्यचकित, ये आश्चर्य की बात यह थी कि एक रूप में भगवान गोवर्धन के रूप में सब खा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं भोग को, पर दूसरे ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं। भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 16,108 रानियों के साथ एक सबके साथ नाचते हैं वो, और सबको लगता है कृष्ण मेरे साथ ही है, दूसरों के साथ नहीं, बेचारे लोग, तो उनके लिए दो विस्तृत रूप करना कोई तकलीफ बात नहीं है। तो इस तरह से भगवान प्रणाम कर रहे थे और सबको कहे कि गोवर्धन को प्रणाम करो, और सब लोग, उन्होंने खुद किया, गोवर्धन को प्रणाम किए और कहने लगे, और इस तरह से सब कुछ खा लिया। खाने के बाद कहे और तो क्या देंगे बेचारे, सब कुछ खत्म हो गया था। तो ग्वाल वालों ने कहा अभी क्या, सब कुछ खिला दिया आपको, घर में जो कुछ एक एक तिनका था सब हमने दे दिया प्रेम से। तब एक ब्राह्मण था, बूढ़ा ब्राह्मण, उसने कहा कि एक मिनट, उसने एक तुलसी का पत्ता लाया और प्रेम से गोवर्धन को दे दिया, बोले ए लो, और जब गोवर्धन उसे स्वीकार किया, बोले अभी तृप्त हो गया, बिना तुलसी क्या, छप्पन भोग 36 व्यंजना, बिना तुलसी प्रभु एक नहीं माने। तो ये तुलसी महारानी की महानता है कि उनकी कृपा से हम अयोग्य व्यक्ति भी भोग लगाते हैं तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जैसा कोई बड़े आदमी से मिलना है आपको, अच्छा आपको रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा तो कोई मिलेगा ही नहीं आपको बड़ा आदमी, पर उनका कोई पहचान जो हमारा भी पहचान है उनके साथ थोड़ा पहचान करने के बाद बोलेंगे भाई थोड़ा मिला दो, और वो अगर रिकमेंड कर दे हमारे लिए तो बड़े व्यक्ति को मिलना भी आसान। इसी तरह से प्रसन्न हो गए भगवान, और उसके बाद एक क्षण में फिर से सारा भोग जो अर्पण किए थे वापस आ गया, भगवान ने स्वीकार किया महाप्रसाद के रूप में वापस आ गया। और फिर सब, मतलब कोई ऐसा ब्रजवासी नहीं था जो भूखा था, कोई ऐसा प्राणी नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, सबको अच्छी तरह से खिलाया। खिलाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति ये गोवर्धन की पूजा नहीं करेगा, ब्रजवासियों को कह रहे थे गोवर्धन में बड़े बड़े सांप है काट डालेंगे उसे और निश्चित रूप से उसका सब बुरा हो जाएगा, गोवर्धन की पूजा करना। और इस तरह से आज तक, आज भी हजारों लोग गोवर्धन अन्नकूट के दिन आते हैं और बड़े प्रेम से भोग लगाकर गोवर्धन जी को, गिरि गोवर्धन को, गिरिराज को, और तब परिक्रमा करते हैं उस दिन। तो इस तरह से भगवान ने स्वीकार किया और सब ग्वाल वाल प्रसन्न होकर भगवान का गुणगान करते करते बहुत आनंदित खुशी होकर लौट गए। ब्रज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो तृप्त और आनंदित नहीं था, सिर्फ एक व्यक्ति थोड़ा बिगड़ गया, वो था इंद्र। क्या मूर्ख बालक, ये 7 साल के छोटे बालक के कहने पर इन लोगों ने इतने साल से आई हुई परंपरागत मेरी पूजा को रोक दिया है, ये लोग मूर्ख हैं, इन्हें अहंकार हो गया है। देखिए कौन कह रहा है, जैसा चश्मा लगाओगे पूरी दुनिया वैसे लगेगी, इंद्र कह रहा है। इंद्र प्रभु की जय हो, जो भी है वो महान है, पर इंद्र कह रहे हैं कि इन लोगों को अहंकार हो गया है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम बारिश करता हूं, इनको अहंकार हो गया, इतना संपत्ति धरा सब भरा हुआ है इसलिए अहंकार हो गया है, आज इनके अहंकार को मैं चूर करके रखता हूं। और गुस्से में आदमी इतना पागल हो जाता है कि एक मच्छर को मारने के लिए तोप ले आता है, वो देखता नहीं है कि वो साइज कितना है मच्छर का और मैं जो ले जा रहा हूं कितना बड़ा, वो कुछ देखता नहीं है, बोले उसे मारना है ना, जो कुछ भी है सब ले आओ घर के अंदर, लाठी है ले आओ ये मच्छर को मारना है। इस तरह से इंद्र ने उन बादलों को, मतलब अपना सबसे श्रेष्ठ शक्तिशाली जो वेपन, जो अस्त्र है, वो लिया हाथ में वज्र, और फिर सबसे खतरनाक बादल, वही उसका अस्त्र है ना, बादल से बारिश देता है, पर वही बादल को थोड़ा ज्यादा हो गया तो हमको मालूम है, कोल्हापुर में भी आप लोगों ने अनुभव किया है, थोड़ा बादल, कोई ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा बारिश हो गया तो क्या हालत होता है हमारा, बंबई में आप लोगों से ज्यादा हुआ हमको अनुभव, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सैंपल था बस, ये जो आपने बारिश देखा ये नगण्य करोड़ों का एक टुकड़ा था। इंद्र ने ब्रजवासियों को, अब कौन है ब्रजवासी, छोटा सा ब्रज गांव है 93 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में दिल्ली के, छोटा सा गांव ब्रजमंडल 84 कोस बस, वो बोले इसमें सारे गऊओं को मार डालो, ऐसा बारिश करो, ऐसा तूफान, बोले वरुण देव तुम भी आओ, वायु तुम भी आओ घुसाओ, ऐसा पवन, ऐसा चलाओ, ऐसी बिजली, ऐसी बारिश, ऐसा करो, एक भी गाय नहीं बचे इधर, एक भी ग्वाल बाल नहीं बचे। तो संवर्तक बादल, संवर्तक मतलब जब महाप्रलय होता है उस समय 4-1 मिनट के अंदर पहाड़ कौन सा और समुद्र कौन सा समझ में नहीं आता, ऐसे पूरा एक बड़ा पानी का ये बन जाता है। ऐसे संवर्तक बादल को बुलाया इंद्र ने और कहा कि बरसाते जाओ, देखो मत बस। संवर्तक ने कहा प्रभु चाह तो जाएंगे हम लोग, आप कह रहे हैं आप मतलब सोच समझ के बोल रहे हैं ना, आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हैं, पूछो मत, मैं कह रहा हूं जाओ जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जा रहे गए पूरा, चिंता मत करो मैं भी पीछे आ रहा हूं ऐरावत में पूरा अपना वज्र लेकर, कोई बचा तो उसको मैं मारूंगा। तो फिर इस तरह से आक्रमण किया, ये अहंकार का स्वरूप है कि व्यक्ति कौन है, उसकी शक्ति क्या है, वो कुछ नहीं देखता और जो कुछ भी है प्रहार करना। तो इस तरह से इंद्र आ गया, बारिश होने लगी और प्रभुपाद जी लिखते हैं बारिश बूंदों के समान नहीं हुई, आप जहां टेक के बैठे हुए ना खंबे, ऐसे बारिश गिर रहे थे, ये खंबे भी छोटे हैं एक्चुअली, आप कोई बहुत बड़े बिल्डिंग पे जाइए इतना बड़ा खंबा होता है, चार लोग ऐसा पकड़ेंगे तो एक दूसरे को हाथ पकड़ सकते हैं, ऐसे खंबे के समान, और कुछ क्षणों में पूरा ब्रज डूब गया एकदम, पूरा पानी 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 भर गया, सब हाहाकार मच गया, गाय जो है अपने बछड़ों को छिपा के रख रही, बेचारे बछड़े थत्थर थत्थर कांप रहे हैं, ग्वाल वाल कांप रहे हैं, गैया भी कांप रही है। और जब तकलीफ होता है ब्रजवासियों को एक ही चीज मालूम है, एक ही फॉर्मूला उनके पास, बस कृष्ण कृष्ण महाभाग, तो भागे सब कृष्ण के पास, बोले प्रभु हमने को आपको मैं बोला था, हमने बोला था कई साल से हमारी देवी देवता की पूजा करते आ रहे हैं और आपने बीच में ना कड़ा दिया, अभी देखो गुस्सा हो गया हमारे कुल देवी को और अभी हमारा धर्म संकट, अभी संकट आ गया अभी। तो भगवान ने कहा तुमने किसका पूजा किया, गोवर्धन ना, गोवर्धन के पास जाओ वही तुम्हें बचाएगा। और भगवान तुरंत गोवर्धन के पास गए और कहा कि सब लोग आ जाओ गोवर्धन के पास, और भगवान की अचिंत्य लीला शक्ति के द्वारा जब भगवान श्री कृष्ण वहां से गोवर्धन गए, एक बूंद पानी भी भगवान को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि इंद्र जो है ये भौतिक संसार का व्यक्ति है, भगवान तीन गुणों से परे हैं, उनसे उनको कुछ असर नहीं पड़ता। और आए और जैसे एक हाथी अगर गन्ने के खेत में घुस जाए और एक गन्ने के इसको ऐसा उठा के कचाड़ देता है, जैसे एक बच्चा एक छोटा सा मशरूम बोलते हैं ना उसको, क्या कहते हैं मशरूम, हाँ उसको जैसा उठा लेता है, ऐसे भगवान ने बड़ी बिना कोई परिश्रम किए ऐसे हल्के से बाएं हाथ की, हरिवंश में वर्णन है कि बाएं हाथ की छोटी उंगली में ऐसे उठाया और बोले आ जाओ सब लोग अंदर आ जाओ। अब अगर पूरा शक्ति लगाते और मां क्या बोलते हैं नस नस बाहर आ रहे हैं, आंखें फूल रही है जैसा अभी कसरत करते कोई और वेट लिफ्टिंग करता है, वो दूसरी बात है, तो इंद्र को भी लगता है समझ में आया मेरा शक्ति क्या है। पर किसी को आप अगर अपमान करना चाहते हो, पता नहीं कोल्हापुर में क्या कहते हैं पर बंबई में अगर मैं आपका अपमान करना चाहता हूं तो बोलते हैं तू मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली का खेल, क्यों, क्योंकि बाएं हाथ का छोटी उंगली जो है सबसे दुर्बल अंग है, तो मेरा सबसे दुर्बल अंग और तुम्हारा सबसे शक्तिशाली जो शक्ति अस्त्र है दोनों बराबर भी नहीं, वो भी कुछ नहीं उसके सामने। भगवान ने बोला नहीं, करके दिखाया। और सात दिन और सात रात तक ऐसे, ऐसा नहीं कि सांस फूल रहा था, कोई पकड़ो सपोर्ट करके रखो, लोड बेरिंग पिलर डालो साइड में से, नहीं आराम से पकड़े हुए थे। और फिर सारे ग्वाल बालों को, तो एक व्यक्ति ने एक लीला सुनने के बाद कुछ दिन पहले बोला प्रभु जी मेरे को बहुत बड़ा प्रश्न है, महाराज जी ने बोला, बोला क्या हो गया, बोला साइड से पानी नहीं आया क्या, क्योंकि उसका अनुभव था बेचारा, सायन का आदमी है, कोरला का आदमी है, जहां बंबई में बारिश आया था, ऊपर से छत था पर साइड में से खिड़की में से आ गया पानी, तो बोला भगवान तो उंगली में पकड़े थे पर साइड में नहीं आया क्या। स्वाभाविक है, हमारी बुद्धि क्या है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारा तो वही भावना है कि शायद इधर से आ जाएगा, पीछे से आ जाएगा, कुएं से आ जाएगा। तो पूछा साइड में से नहीं आया, तो नहीं, अलग 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 आचार्यों का वर्णन अलग अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान की लीला शक्ति के द्वारा, कुछ लोगों का कहना है कि सुदर्शन ऊपर था और जैसे ऊपर एक एक बूंद गिरता था वो एकदम हवा बन जाता था, और अलग अलग आचार्यों का अलग अलग कहना है कि किस प्रकार भगवान ने ऐसा इंतजाम किया कि एक बूंद पानी अंदर नहीं आया, अंदर आना तो दूर की बात, किसी के सर के ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं लगा, यहां तक कि गोवर्धन के ऊपर जो गांव गौवे सब चर रहे थे वो भी, उनको भी कुछ नहीं हुआ, और गोवर्धन के ऊपर जो घास फूस हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके एक एक सूखे पत्ते भी हिले नहीं वहां से, जबकि इंद्र पूरा, अभी हम एक पेड़ के पास जाके थोड़ा हिलाते हैं तो बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं, सूखे पत्ते कम से कम, पर यहां इंद्र अपना पूरा प्रहार कर रहा है पर एक पत्ता भी नहीं गिरा, और गुस्से में उसने देखा भी नहीं, सात दिन सात रात तक मारते रहा, चलाते रहा उसको, और फिर देखा कुछ भी नहीं हो रहा है। वो दूर की बात, उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक, यहां अंदर क्या हो रहा है, ऊपर से चल रहा है बेचारा, उसका एकदम मूड ऑफ हो गया इंद्र का, बोले क्या पूरा कोशिश कर रहा हूं कुछ नहीं हुआ, पर अंदर क्या हो रहा है, इधर भगवान श्री कृष्ण उठाए हुए हैं, बहुत सुंदर लीला है, सात दिन और सात रात तक एक क्षण भी गया मानो ऐसा नहीं लगा, ग्वाल बालों को ऐसा लगा, सारे गो गोपियों को ऐसा लगा, गौओं को ऐसा लगा कि ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट गुजरा है बस, अब 20 मिनट कभी कभी एक दूसरे को सामने खड़े होकर देखते रहना कोई तकलीफ नहीं, और खास भगवान श्री कृष्ण खड़े हो तो ब्रह्मा जी की एक दिन तक आवा एक दूसरे को देख रहे हो फिर भी आप ऐसा लगता है कि एक क्षण भी नहीं हुआ। तो इस तरह से भगवान आचार्य वर्णन करते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही थी, हर एक व्यक्ति अपने अपने रस के अनुसार भगवान के साथ आस्वादन कर रहा था। यशोदा माई कह रही थी कि बेटा तो बहुत उठा लिया, अभी तो कुछ खा तो ले, और सीदामा और मधुमंगल जो भगवान का ब्राह्मण मित्र है वो कहने लगा हाँ हाँ मैया तू खिला दे तब तक मैं गोवर्धन पकड़ के रखता हूं, काना तू खा ले मैं थोड़ा उठा के रखता हूं तब तक तेरे लिए, अगर तू उठा सकता तो मैं भी उठाता हूं, मेरी ब्राह्मण शक्ति है, एक मंत्र बोलूंगा उठा के रखूंगा, चिंता मत कर तू खा ले। फिर नंद महाराज आए, फिर यशोदा माई आई, फिर और ये सब कह रहे हैं पर राधा रानी दूर से टेढ़ी नजर से देख रही है, और दूसरा ग्वाल वाल करता उधर बात देखो नहीं तो हिलने लगेगा थोड़ा गोवर्धन उनके टेढ़ी नजर से आप हिलने लगोगे और हम सब धस जाएंगे अंदर। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग रस के अनुसार भगवान अपने भक्तों के साथ सात दिन और सात रात तक ऐसे प्रेममय आदान प्रदान हुआ कि लोगों को पता भी नहीं लगा कि एक क्षण गया। और इस तरह से भगवान ने प्रेम पूर्वक सात दिन और सात रात अपने ब्रजवासियों के साथ आदान प्रदान किया, यह उनका अंतरंग कारण था गोवर्धन का उठाना। और तत्पश्चात इंद्र समर्थ को बोला चलो वापस चलो, सब चलो वापस, हो गया काम, हो गया हमारा, कुछ नहीं हुआ, ऑपरेशन फेल्योर, चले गए वो। चले जाने के बाद भगवान ने कहा कि आप लोग सब लोग जाओ, और बड़े प्रेम से गोवर्धन को उन्होंने जैसा उठाया था वैसे प्रेम से वापस एग्जैक्टली वही एंगल में रख दिया। रखने के बाद सब चले गए, और वहां इंद्र को समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, न केवल भगवान के प्रति, भगवान के प्रति अपराध जो है वो भगवान माफ कर देते हैं, पर सबसे बड़ा अपराध है जो भगवान के हृदय को सबसे प्रिय है उन भक्तों के प्रति अपराध, और ब्रजवासी जो है सबसे प्रिय भक्त हैं, वहां की गाय जो है वो और भी प्रिय हैं, उनके प्रति इंद्र ने ऐसा अपराध, उतना तकलीफ में उनको डाला था, तो बेचारा मुंह दिखाने योग्य नहीं मालूम है, तो वो मेरु पर्वत पे गया और ब्रह्मा जी को कहने लगा। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, आप अभी फिर से मुंह दिखा नहीं सकते अभी। वो बोला मैं कैसे जाऊंगा, किस मुंह से मैं अभी भगवान के सामने जाऊं। फिर भी भगवान ने कहा एक काम करो, सुरभि को ले जाओ। तो इस भौतिक संसार में भी एक गोलोक है जिसके इसमें से सुरभि आई, जो गायों की श्रेष्ठ माने जाती है माता, उनको सामने रखकर कहां इंद्र। आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा अपने आंख बंद कर इसको इमेजिन कीजिए कि देवेंद्र देवों का, सारे देवताओं का मुख्य इंद्र राजा, वो गाय के पीछे पीछे ऐसे जा रहा है छिप छिप के वो भी, और सामने 7 साल का एक छोटा लड़का खड़ा है और उससे भी मुंह छिपा रहा है। क्या हालत हो गई इंद्र की, और इतना मतलब हिचकिचा रहा है कि भगवान को कैसे आंखों से आंखें देखने की भी शर्म आ रही है उसको। जिस व्यक्ति को मारने का कोशिश किया, उसके सारे परिवार को खत्म करने का कोशिश किया, अब उससे कैसे माफी मांगे सिर्फ। तो एक व्यक्ति को रिकमेंडेशन लगा के एक सामने सुरभि को सामने रख के फिर पीछे गया। आप सोचिए एक्चुअली इंद्र का क्या परिस्थिति हुआ होगा। पर ये क्या बोलते हैं, ये अहंकार ऐसी चीज है। इंद्र ने बहुत सारी प्रार्थना की, इसरो ने भी बहुत सारे प्रार्थना की, पर एक चीज, इंद्र इतना प्रार्थना करने के बावजूद भी थोड़े समय के बाद जब भगवान सत्यभामा को लेकर पारिजात लेने गए, फिर से उसने आक्रमण किया। इसका मतलब यह है कि जब हमें शक्ति मिलती है, भगवान की शक्ति, भगवान की अलग अलग शक्ति है, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यश श्रीयः ज्ञान वैराग्य, इच्छे भगवान की क्या बोलते हैं, हाँ ऐश्वर्य है। इसमें से कोई एक चीज का एक लेश मात्र भी हमारे पास हो, किसी के पास ऐश्वर्य ज्यादा है तो वो अहंकार हो जाता है उसको कि मैं नियंत्रण करता हूं, कौन है भगवान, मैं सब संभाल लूंगा, चिंता मत करो। वीर्य कोई बहुत शक्तिशाली है, उसकी शक्ति में इतना गर्व हो जाता है कि वो अपने आप को भगवान समझने लगता है और भगवान का अनादर करता है। वीर्य से यश, बहुत यशस्वी हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है तो भी अपने आप को भगवान समझने लगता है। श्रेय, शारीरिक सुंदरता है, सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं, ये लोग सब क्या है इनका चेहरा, अहंकार हो जाता है। हम देखते बड़े बड़े फिल्म स्टार बड़े सुंदर हैं, टीवी में आते रहते, सब लोग उनको बार बार देखते, चार चार बार घूम घूम के देखते हैं, तो उनको लगता है कि मैं ही कृष्ण हूं, सर्व आकर्षक आकर्षयति इति कृष्ण, बार बार सब मुझे देख रहे हैं, शायद मैं ही कृष्ण हूं। श्रीय ज्ञान, अगर बहुत ज्ञानी है, बड़े बड़े अच्छा ज्ञान की बातें कह सकता है तो भी अहंकार हो जाएगा। वैराग्य भी ज्यादा हो और कह लेगा मैं इतना वैरागी हूं, उससे भी अहंकार हो सकता है। पर हमें जानना चाहिए कि जो कुछ भी है भगवान की कृपा से मिली है, पर ये स्वभाव ऐसा है कि थोड़ा भी ये मदोन्नत, इसीलिए कुंती महारानी कहती है जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीधीर एधमान मद, ये बढ़ता हुआ मद है, ये भगवान निकालते हैं तो ठंडा हो जाते हैं हम लोग, फिर थोड़ा मिल गया तो फिर से बढ़ने लगता, फिर ठंडा, फिर बढ़ने लगता बार बार। अरे हिंदू को ऐसा होता है तो हम कौन से खेत के मूली हैं, हो जाएगा कभी भी। तो इस तरह से इंद्र उस समय आकर प्रार्थना करता है, माफी मांगता है और भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ठीक है। और फिर सुरभि मां, माता सुरभि जो है वो भी कहती है कि आप प्रभु, आप तो हम सबके इंद्र हैं, और यह कहकर भगवान को वो ये करती है अभिषेक। ये सुंदर जो ये कुंड, जो चित्र आप देख रहे हैं यहां, ये गोविंद कुंड है, ये गोविंद कुंड का पानी जो है वो उसी अभिषेक का पानी है जब इंद्र ने ऐरावत के द्वारा दिव्य गंगा का पानी स्वर्गलोक से लाकर भगवान का अभिषेक किया और माता सुरभि ने अपने ही दिव्य दूध से और सारे गायों के दूध से भगवान का अभिषेक किया और उसमें जो कुंड बना वो है ये गोविंद कुंड। आज भी गोवर्धन पर्वत के बगल में बहुत सुंदर सा एक कुंड है जिसको गोविंद कुंड कहते हैं और वहां पहली बार माता सुरभि ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद के नाम दिया गया। गोविंद, गो यानी गाय और विंद मतलब जिनका रक्षण करने वाला, अलग अलग मतलब है पर ये गोविंद का मतलब। और सुरभि कहने लगी कि आप ही हमारे इंद्र हो, आप ही असली इंद्र हो, इंद्र यानी नियंत्रण करने वाला। तो इस तरह से बहुत सुंदर से ये लीला समाप्त होती है। उसके बाद सारे देवी देवतागण आते हैं और इंद्र बेचारा तभी हिचकिचाता रहता है, अभिषेक करूं कि नहीं करूं, कभी कैसा जाऊं भगवान के पास। तो माता अदिति और दूसरे सब कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ अभिषेक करो, माफी मांगो। और फिर दिव्य ऐसे बहुत ही चमकता हुआ जो उसका मुकुट है उसको भगवान के 7 साल की उम्र के भगवान के चरण कमलों पे लगाकर माफी मांगता है। और इस तरह से ये लीला हुई। तो यहां हम देखते हैं हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरणे स्पर्श प्रमोद मानम तनोति। मानम तनोति, मानम मतलब आदर पूर्वक सेवा कर रही है। गोवर्धन जो है बड़े आदर पूर्वक न केवल कहते हैं मानम तनोति सह गोगणयोस तयोर, तयोर मतलब राधा कृष्ण और बलराम, न केवल वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम की सेवा कर रहा है गोवर्धन बल्कि सह गोगणयो हो सारे भक्तों का भी। कैसा सेवा कर रहा है? पूर्ण रूप से उनको तृप्त करने के लिए पानीय सूयवस कंदर कंद मूलई, उन्हें जो कुछ जरूरी है उनकी जो कुछ आवश्यकताएं हैं उसको अच्छी तरह से पहले से ही जानकर उसकी तैयारी करके पहले से रख दिया है। यह सेवा करने का तरीका है। मानम तनोति बड़े आदर पूर्वक, और दूसरे जगह अहंकार के कारण अपमान, भगवान का उसने अपमान किया। और यहां हम देख रहे हैं मान। तो भगवान ने बहुत सुंदर लीला की, गोवर्धन के द्वारा इंद्र का मान को भंग किया और गोवर्धन का मान बढ़ाया। क्यों? क्योंकि हरिदास वर्यो सबसे श्रेष्ठ हरिदास है। तो आज के दिन कम से कम हम लोग गिरिराज गोवर्धन से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा हमारा मूल स्वरूप क्या है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति ही। सच्चा मुक्ति का मतलब है अपने स्वरूप में स्थित होना, और वो स्वरूप क्या है श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, ना हम विप्रो न च नरपति ना भी वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च ग्रहपतिर न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुः पदकमलयोर् दास दासानुदास। के मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय नहीं हूं, वैश्य नहीं हूं, शूद्र नहीं हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं, गृहस्थ नहीं हूं, वानप्रस्थ नहीं हूं, संन्यास नहीं हूं, तो कौन हो भाई? बोले गोपी भर्तु, गोपी के भर्ता भगवान श्री कृष्ण के पदकमल और उनके चरण कमल। यहां कह रहे हैं दास दास अनुदास। और कैसे बन गए वो? बोले यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, भगवान राम और कृष्ण के चरण स्पर्श से प्रमोदित है, खुश है, वो प्राप्त है, इसीलिए वो सेवा कर पा रहे हैं। तो भगवान के चरण कमल का स्पर्श हो जाए तो ये भावना आ सकती है, चरण स्पर्श होना मतलब उनकी कृपा हो जाए। एक्चुअली जब तक भगवान की अहितु की कृपा, भगवान की अहितु की कृपा कैसे होती है, यस्य प्रसाद और भगवत प्रसाद हो, भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके प्रतिनिधियों को प्रसन्न करना है। फिर जब उनको प्रसन्न करते हैं तो उनकी कृपा से ये भावना प्राप्त होती है, ये पूर्ण रूप से हम समझ जाते हैं कि मैं ये नहीं हूं और कुछ नहीं हूं, ये सब शारीरिक डेसिग्नेशन उपाधि है, पर हमारा मेन उपाधि, हमारा नित्य उपाधि ये है कृष्णदास, ना कृष्णदास ही नहीं, कृष्णदासानुदास सहगो गणयो। तो सबसे श्रेष्ठ हरिदास वर्य यह गिरिराज गोवर्धन, जो भगवान से अभिन्न भी है, भगवान ने खुद बताया, भगवान के हृदय से आई हुई है गिरि गोवर्धन, ये जो सुंदर पर्वत भगवान की सेवा के लिए, राधा कृष्ण की क्या बोलते हैं लीला को मदद करने के लिए। और गुरु कौन है, हम हर रोज गुरुअष्टक में गाते हैं चौथा एक जो है, जहां इनके दिव्य लीला में मदद करते हैं, कौन सा वो श्लोक है, निकुंज यूनो रतिकेली सिद्ध्यै यायालि भीर युक्तिरपेक्षणीय तत्राति दक्षाद अति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। निकुंज यूनो रतिकेली सिद्ध्यै, उनकी मदद के लिए यायालि भीर सारे गोप गोपियां युक्त है, वो मदद कर रही है, वो राधा कृष्ण की लीला में मदद कर रही है, मंजरियां उनके और कोई मदद कर रहा है, उनको और कोई मदद कर रहा है। तत्राधि दक्षाद, उसमें अति दक्ष है सदगुरु, तो उनको अगर प्रसन्न करें तो हम दास 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 अनुदास हो जाएंगे, और उन वो भावना रहे तो एक्चुअली कभी हम लोग अहंकार नहीं होगा। इसीलिए ये जो श्लोक है, अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरे, सुबह हम चर्चा कर रहे थे, तरोरी व सहिष्णुना तृणादपि सुनीचे न तरोरी व सहिष्णुना, और ये है अमानिना मान देन। तो एक है किसी का मान अहंकार को चूर करना, पर यहां भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से गोवर्धन को उठाया और स्पर्श किया। तो इस तरह से आज के दिन हम गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो हमारा मूल स्वरूप है, गोपी भर्तुर पद कमल योर दास दासानुदास, वो इनकी कृपा से प्राप्त करें। जनरली हम लोग अभी कीर्तन करते वक्त गिरिराज के परिक्रमा करेंगे और उस समय ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, भगवान ने खुद सिखाया कैसे गिरिराज गोवर्धन की पूजा की जाए, के उनका परिक्रमा करना और प्रणाम करना। तो इस तरह से ये सुंदर लीला के द्वारा भगवान ने कई कार्य करा दी, गिरिराज गोवर्धन की महिमा को पूरे विश्व में बता दिया, और ये सुंदर रीति पद्धति सिखाई जिसके द्वारा हम गिरिराज का गुणगान कर पाएं और आज के दिन उनकी सेवा का ध्यान कर सके, और क्या नहीं करना है इंद्र के द्वारा सिखा दिया इसी लीला में। कभी कोई भी चीज भगवान की कृपा से हमें उपलब्ध हो, इसके प्रति अहंकार न होना। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय।